ओम शांति। कैसे हैं सभी? सब एंजॉय कर रहे हैं? सेशन सबको समझ में आ रहे हैं? तो आज हमारे इस सेशन को कंडक्ट करने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं हमारे ब्रह्मा कुमारीज के नामी ग्रामी और इस देश के प्रख्यात मोटिवेशनल स्पीकर बीके गौरव। कृपया कर्नल ध्वनि से उनका स्वागत कीजिए। बीके गौरव 21 वर्षों से ज्ञान में हैं। आप बीटेक और एमबीए हैं। आप तक्ष मीडिया कंपनी के मैनेजर हैं। साथ ही आप 6 साल से मोटिवेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंडक्ट कर रहे हैं जिसमें स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्टेप्स टू सक्सेस, सीक्रेट्स ऑफ सक्सेस, इस तरह के टॉपिक्स पर आपकी महारत है। आप सिप्ला, एसबीआई, अलाहाबाद बैंक जैसी कंपनीज के और बैंक्स के रेगुलर ट्रेनर हैं। तो हम चाहेंगे कि आज जो हमारा सेशन है सीक्रेट्स ऑफ सक्सेस, वो गौरव जी स्टार्ट करें और सभी उसको ध्यान से सुनेंगे। ओम शांति।
ओम शांति। ओम शांति। ताकत से बोलिए ओम शांति। बहुत बढ़िया जी। खिलाड़ियों में तो वैसे ही बहुत जोर होता है, बहुत ताकत होती है। तो इस सत्र में आप सभी का स्वागत है जिसका नाम है सीक्रेट्स ऑफ सक्सेस, सफलता के रहस्य। हम में से कौन कौन सफलता प्राप्त करना चाहता है? जिनके हाथ बाद में खड़े हुए क्या मान ले उनके लिए, वो बाद में चाहते हैं। दोबारा से करेंगे, कौन कौन सफलता प्राप्त करना चाहता है? बहुत बढ़िया जी, एक्यूरेट। जैसे हर काम को करने का एक तरीका होता है। यदि गेहूं से हमारे को रोटी बनानी है तो सीधी रोटी नहीं बनेगी। गेहूं को पहले पीसना पड़ेगा, उसके आटे को गूंधना पड़ेगा, फिर उससे चपाती बनाई जा सकती है। उसी तरीके से किसी भी काम के, किसी काम में सफलता हासिल करने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं, कुछ रहस्य होते हैं जिनको समझना बहुत जरूरी है। जितना जितना उन रहस्यों को समझते रहेंगे, उनको लागू करते रहेंगे, हम सफलता के बहुत बहुत करीब पहुंचते रहेंगे। तो स्टार्ट करने जा रहे हैं सीक्रेट्स ऑफ सक्सेस। सबसे पहला रहस्य ध्यान देंगे, सी योर गोल, अपने लक्ष्य को देखिए। आपने देखा होगा किसी भी कंपटीशन के अंदर या किसी भी कोई एक प्रोग्राम के अंदर हजारों लाखों लोग पहुंचते हैं उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, लेकिन चरम सीमा तक कितने लोग पहुंचते हैं? क्या सभी पहुंचते हैं? कुछ लोग पहुंचते हैं, बहुत थोड़े लोग पहुंचते हैं। वो कौन से लोग चरम सीमा पर हाइट पर पहुंचते हैं? वे चरम सीमा पर वो लोग पहुंचते हैं जिन्होंने अपनी एनर्जी को चैनलाइज किया होता है। मेरे साथ बोलेंगे, कौन लोग टॉप पर पहुंचते हैं? जिन्होंने अपनी एनर्जी को चैनलाइज किया होता है, फोकस किया होता है। हर इंसान के अंदर व्यंत एनर्जी है। अगर आपने एक लाइन सुनी हो कि हर मानव के अंदर एक महामानव है, ये किन्होंने बोला महामानव है? ताली बजाएंगे उनके लिए भाई साहब, बहुत बढ़िया रहस्य बताया। हर मानव के अंदर एक महामानव है, लेकिन फिर भी हम क्यों उस महामानव को नहीं जगा पा रहे हैं? एक छोटा सा रहस्य। जैसे ही मैं एक खिलाड़ी हूं, मेरा लक्ष्य खेलना है, एक लक्ष्य है मेरा कि मुझे वहां तक पहुंचना है, मुझे तेंदुलकर जैसा बनना है या साइना नेहवाल जैसा बनना है या मैरी कॉम जैसा बनना है। लेकिन मेरे दिमाग में आता है कि बहुत सुंदर गाड़ी है ये वाली, मुझे ऐसी गाड़ी भी चाहिए। 2 घंटे मैं उस गाड़ी के बारे में सोच रहा हूं। जैसी वो गाड़ी मेरे आगे से निकलती है, मेरा सब तरफ से ध्यान डाइवर्ट होकर किधर लग जाता है। जैसे मेरा ध्यान गाड़ी की तरफ लग गया, मेरी एनर्जी कहां डाइवर्ट हो रही है उस वक्त? कहां से ध्यान हट गया? लक्ष्य से ध्यान हट गया और ध्यान लग गया गाड़ी की तरफ। यदि मेरा ध्यान एक मोबाइल की तरफ चला गया, मुझे ऐसा मोबाइल चाहिए, सारी एनर्जी कहां डाइवर्ट हो रही है? उस मोबाइल की तरफ। हमारी जो एनर्जी है वो फोकस की तरफ ना लगकर आसपास डाइवर्ट हो रही है। यही कारण है हम लक्ष्य की तरफ नहीं पहुंच पाते हैं। जो लोग लक्ष्य की तरफ स्पीड से जल्दी पहुंचना चाहते हैं, सबसे पहले कार्य करना होगा, ऑलवेज सी योर एम, अपने लक्ष्य को देखते रहें। और कब कब देखना बहुत जरूरी है? आप बहुत क्लासेस अटेंड कर चुके हैं मैं समझता हूं, अब तक तो याद हो गया होगा कब लक्ष्य को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, कब उसका मैक्सिमम इफेक्ट हमारे ऊपर पड़ता है। सुबह उठकर कब? उठते ही। और कब दोबारा देखना चाहिए? उसके अलावा कब देखना चाहिए? सोने से पहले एग्जैक्टली ये दो टाइम आपकी लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है जब आपको अपने लक्ष्य को करते हुए देखना चाहिए कि आप वैसा कर रहे हैं। और जब जब आप लक्ष्य को देखेंगे आपके अंदर एक चार्जिंग आ जाएगी, एक एनर्जी पैदा हो जाएगी आपके अंदर। जैसे एक इस फोटो को देखिए, कौन दिख रहे हैं यहां पर, कुछ याद आ रहा है आपको महाभारत का सीन, अर्जुन और साथ में द्रोणाचार्य और उन अर्जुन के हाथ में एक तीर कमान और साथ में बहुत इंपॉर्टेंट चीज बाज की आंख दिख रही है। द्रोणाचार्य ने कुरु वंश के सभी राजकुमार और पांडव वंश के सभी राजकुमारों को तीर कमान पकड़ा दिए और कहा उस चिड़िया की आंख पर निशाना लगाना है। और बारी बारी से जब सबने तीर कमान का निशाना लगा लिया तो द्रोणाचार्य जी ने हर एक से जाकर पूछा, आपको क्या नजर आ रहा है, आपको क्या नजर आ रहा है। सिर्फ एक अर्जुन ही थे जिन्होंने ये कहा कि मुझे केवल और केवल चिड़िया की आंख नजर आ रही है और कुछ नजर नहीं आ रहा। और बाकी सब ने ये कहा कि चिड़िया की आंख के अलावा चिड़िया भी नजर आ रही है, पेड़ पत्ते भी नजर आ रहे हैं। तो द्रोणाचार्य ने अंदाजा लगा लिया कि ये अर्जुन ही हैं जो दुनिया के सर्वोत्तम धनुधर बन सकते हैं। सिर्फ अपनी एनर्जी को क्या करना है जी, चैनलाइज करना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मान लीजिए हम में से बहुत आगे हम लाइफ में जाना चाहते हैं, आपका एक एम है और आप उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, शाम को उसकी प्रैक्टिस की, 10-11 बजे तक प्रैक्टिस करते रहे, रात को थक कर सोए और फिर आपको मालूम है कि सुबह 5 बजे उठकर फिर आपको प्रैक्टिस के लिए जाना है, 5 बजे अलार्म भी बजा, फिर क्या करते हैं हम फिर क्या करते हैं जी, सभी जानते हैं क्या करते हैं, ये बताने की जरूरत है, सभी बहुत से लोग जानते हैं, सेम प्रैक्टिस, अलार्म बंद करते हैं और सो जाते हैं। लेकिन यदि आप उस वक्त ये याद कर लें कि मैं यहां क्यों हूं, मैंने ये स्पोर्ट्स क्यों ज्वाइन किया, मैंने कहां जाना है, मैंने उतना बड़ा, मैंने तेंदुलकर जैसा या नेहवाल जी जैसा या मैरी कॉम जैसा प्लेयर बनना है, जैसे ही आपको याद आ जाएगा कि मैंने ऐसा करना है, साथ साथ क्या हो जाएगा, क्या तब भी आप लेट पाएंगे, क्या तब भी आप सो पाएंगे, क्या करेंगे साथ साथ, क्या हो जाएगा जी, खड़े हो जाएंगे। लक्ष्य सामने आता ही एक ताकत पैदा हो जाती है इंसान के अंदर। इसलिए आपको मैं एक बहुत बढ़िया चीज बताने जा रहा हूं। आपने देखा होगा कि आप 2 दिन से कैंपस में जगह जगह घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, क्या आपने नोटिस किया कि हर घंटे बाद एक म्यूजिक बजता है, नोटिस किया आपने, वो म्यूजिक क्यों बजता है, ताकि उस एक मिनट के अंदर हम अपने लक्ष्य को याद करें कि मैंने क्या बनना है, मैं क्यों धरती पर आया हूं। इसीलिए बजाया जाता है ताकि हमने जो सुबह अच्छी बातें सुनी हैं, जो आप सेशन में सुन रहे हैं, उनको रिवाइज करें। वो सिंपल बैठने के लिए नहीं है, वो रिवाइज करने के लिए। आप करके देखिए, आपकी एनर्जी चार्जिंग होती रहेगी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और एक और कहानी मुझे लक्ष्य पर याद आ रही है, लोमड़ी को जानते हैं, नाम सुना है आपने लोमड़ी, बचपन में कहानियां सुनी होगी, अंगूर खट्टे हैं, लोमड़ी की कहानी। ऐसे ही एक लोमड़ी एक खरगोश के पीछे दौड़ रही थी और खरगोश जाकर एक मांद में छुप गया और लोमड़ी वहां जाकर बैठ गई, इंतजार करने लगी कि जब ये खरगोश बाहर आएगा तो मैं इसको झपट लूंगी। उस लोमड़ी को वहां बैठे देख पीछे से 5-4 लोमड़ियां जो आ रही थी वो भी वहां बैठ गई। जो पीछे 4-5 लोमड़ी आई वो ये सोच रही थी कि ऐसे तो नहीं बैठी है ये जो अकेली बैठी है, कोई ना कोई कारण तो है, वरना ये बैठने वाली ऐसे है नहीं है। तो पीछे 4-5 लोमड़ियां वो भी आराम से बैठ गई, देखते हैं क्या होता है, कुछ ना कुछ अगर कुछ खाने पीने का आगा तो हमें भी मिल जाएगा। लेकिन आधा पौना घंटा बैठे रहने के बाद खरगोश मांद से बाहर नहीं आया, तो पीछे वाली लोमड़ियां बोर हो गई, उन्हें मालूम नहीं पड़ा कि क्या करें, वो खड़ी हुई और चली गई। लेकिन जिस लोमड़ी ने मांद के अंदर खरगोश को जाते हुए देखा, क्या वो खड़ी हो गई होगी वहां से, वो वहां बैठी रही, वो 7-8 घंटे भी वहां बैठी रही। उसके अंदर ताकत कहां से पैदा हो रही थी, किस बात से पैदा हो रही थी, कि अंदर है वो लक्ष्य है उसके सामने, और वो 8 घंटे ही बैठ पाई। और जिनके सामने लक्ष्य नहीं था वो 2 घंटे बाद या 2.5 घंटे बाद वो लोमड़ी वहां से चली गई। इसलिए क्या अवश्य सामने रखें और कब कब रखें सामने, सुबह शाम तो रखना ही है जैसा बताया आपने, और कौन सा वक्त रख सकते हैं, वो तो क्लियर हो गया। लेकिन जैसे जब तक आप यहां पर हैं, जब वो हर घंटे का म्यूजिक बज रहा है, आप अपने लक्ष्य को सामने ले आए कि मुझे ये बनना है, ये करना ही है। आप देखेंगे आप अपने लक्ष्य के और करीब जाते जा रहे हैं, आपकी एनर्जी अपने लक्ष्य की तरफ फोकस होती जा रही है, वहीं चैनलाइज हो रही है। और यहां पर एक फ्लोरेंस चैडविक, एक बेहतरीन स्विमर। अब मैं आपको उस महान स्विमर के बारे में बताने जा रहा हूं जिसने इंग्लैंड से लेकर फ्रांस तक जो बीच में समुन्दर है उसको तैर कर 13 घंटे 20 मिनट में पार किया। ताली बजाएंगे इस महान स्विमर के लिए जी। फ्लोरेंस लेडविक रिकॉर्ड ब्रेक किया इन्होंने। उसके बाद इन्होंने कैटलिना चैनल, यूएसए के अंदर एक कैलिफोर्निया और एक कैटलिना आइलैंड है उसके बीच में 26 माइल का डिस्टेंस है, हमें चलकर जाने में दिक्कत होती है, इन्होंने उसको तैर कर पार करने का फैसला किया। अपने साथ लाइफ बोट्स ली, उन बोट्स में इनके साथी थे और बीच में ये तैर रही थी। ठंड बहुत थी, आसपास शार्क्स भी थी, व्हेल्स भी थी, लेकिन किसी भी चीज की परवाह न करते हुए ये स्विमिंग करते रही। लेकिन उस दिन धुंध बहुत ज्यादा थी, फॉग बहुत थी। स्विमिंग करते करते काफी देर स्विमिंग करने के बाद जब ये काफी आगे आ गए लेकिन ये लक्ष्य नहीं दिख रहा था, एम नहीं दिख रहा था कि कितना आगे और चलना है, तो ये हिम्मत हार गई और ये इन्होंने थकावट महसूस की और अपने साथियों को कहा जो लाइफ बोट में थे कि मैं थक गई हूं, मैं और नहीं तैर सकती, मुझे प्लीज लाइफ बोट में आना है। साथियों ने समझाने की कोशिश की कि आप कुछ देर और तैरो, लेकिन ये हिम्मत हार चुकी थी, ये लाइफ बोट में आ गई। और थोड़ी देर बाद लाइफ बोट जब थोड़ा आगे चली तो ये मालूम पड़ा कि ये करीब 24 माइल तो तैर चुकी हैं, बहुत थोड़ा सा डिस्टेंस बचा था, क्यों हिम्मत हार गई, क्या नहीं दिख रहा था, लक्ष्य सामने दिख नहीं रहा था। यदि आपको कोई काम करना हो, आपको अगर आप एक ग्रुप में चल रहे हैं और मालूम ना हो कि कितना आगे चलना है, बहुत जल्दी थक जाएंगे, और यदि ये कहा जाए बस वो सामने वाली बिल्डिंग है अभी पहुंचे कि पहुंचे, बस वो सामने वाला टावर है वहीं तक जाना है, तो क्या होता है जी, एनर्जी आती रहती है ना कि बस पहुंचे कि पहुंचे, पहुंचे कि पहुंचे। इसीलिए लक्ष्य सामने हो। और उसी उसके बाद फ्लोरेंस चैडविक ने दोबारा कैटलिना चैलेंज को क्रॉस करने की कोशिश की। उस वक्त आसमान बहुत साफ था लेकिन पानी जरूर ठंडा था, शार्क और व्हेल्स भी थे, लेकिन एक नई ऊर्जा से तैरना शुरू किया और जुलाई 1952 के अंदर 26 माइल तैर कर पार किया फ्लोरेंस जेडविक ने और वर्ल्ड में रिकॉर्ड कायम किया। क्लैपिंग करेंगे इस महान स्विमर के लिए। और वो लक्ष्य क्लियर था, इसलिए मेरा निवेदन है आप सबसे, सभी खिलाड़ियों से, जब वक्त मिले, जब फ्री हो, अपने लक्ष्य को देखें कि मुझे ये बनना ही है, मुझे यहां जाना है। एक नई ताकत पैदा हो जाएगी आपके अंदर। ये एक और खिलाड़ी हैं, विल्मा गोल्डन रुडोल्फ। हमें से कौन कौन है जिन्होंने इनका नाम सुना हुआ है, कुछ एक नाम सुना हुआ है। ये वो खिलाड़ी हैं जो बहुत गरीब परिवार से थी, 22 भाई बहन थे, इनको 6 वर्ष की आयु में पोलियो हो गया, 2 बार निमोनिया हुआ और इनकी टांगों पर लोहे के ब्रेसेस लगा दिए कि जिंदगी भर ये चल नहीं पाएंगे, लेकिन अपनी मां को ये कहा करते थे, मां मुझे चलना है, अपने पांव पर चलना है, बिना सहारे के चलना है और मुझे दुनिया में सबसे तेज दौड़ना है। देखिए 7 साल की बच्ची ये बोल रही है। उसी ताकत को देखते हुए इनकी मां ने इनकी टांगों पर मसाज करनी शुरू की और ये 9 साल की उम्र में लोहे की तारों के सहारे, ब्रेसेस के सहारे इन्होंने चलना शुरू किया। 11 साल की उम्र में इन्होंने बिना उस ब्रेसेस के चलना शुरू कर दिया। ताकत अंदर पैदा हो रही थी, सिर्फ एक ही बात ताकत दे रही थी, कौन सी बात, मुझे दौड़ना है और दुनिया का सबसे तेज धावक बनना, बस यही चीज, यही लक्ष्य इनको ताकत दे रहा था। रोज ये प्रैक्टिस करते थे। 13 साल की उम्र में पहली बार दौड़े रेस के अंदर, हार गए। 15 साल की उम्र में पहली बार रेस जीते ये, और उसके बाद जीतते रहे। ओलंपिक के लिए इनको कोचिंग दी गई। इनके कोच ने कहा तुम सब कुछ कर सकती हो लेकिन एक बात याद रखना, वही एक बात तुम्हें लक्ष्य तक ले जाएगी, और वो एक बात कौन सी है जी, एक बात याद है, कौन सी बात, अपने लक्ष्य को याद रखना। और इनका लक्ष्य था मुझे दुनिया की सबसे तेज धावक बनना है, आई वॉन्ट टू बी द फास्टेस्ट रनर ऑन अर्थ। यही बात इनको आगे ले जाती रही। और रोम के अंदर 1960 के अंदर जब दौड़ हो रही थी, इनका मुकाबला उन खिलाड़ियों से था जो आज तक एक भी रेस नहीं हारे। और इधर से ये गर्ल विल्मा जिसको पोलियो हुआ था, 2 बार निमोनिया हुआ, बहुत प्रॉब्लम्स के साथ, बहुत पुअर फैमिली से, लेकिन इसने सिर्फ उस लक्ष्य को याद करते हुए दुनिया के हर बेहतरीन खिलाड़ी को हरा दिया और 3 गोल्ड जीते इन्होंने। तो यही मेरा बताने का भाव है कि हम अपने लक्ष्य को जरूर जितना वक्त मिले सामने रखें, देखते रहें। और मैं समझता हूं, अभी इस पॉइंट पर आते हैं, एक लाइन मेरे साथ आप बोलेंगे, तैयार हैं जी? मैं बोलूंगा, मेरे पीछे रिपीट करिए, आप इसको देखकर भी बोल सकते हैं, हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो, जीत तुम्हारी ही होगी, जीत तुम्हारी ही होगी, हर लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो, लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। बहुत बहुत थैंक यू कि लक्ष्य को सदा सामने रखें। और ये एक वीडियो आप देखिए ध्यान से, यानी कि यदि हमारा ध्यान अपने लक्ष्य पर हो तो कुछ भी पॉसिबल है, सब कुछ पॉसिबल है, ध्यान अपने लक्ष्य पर हो, एम पर हो। और ये चित्र मैं समझता हूं जो लोग ब्रह्मा कुमारी सेंटर गए हैं वहां सबसे पहले एग्जीबिशन के अंदर इस चित्र को दिखाया जाता है कि हमें ये क्यों इसलिए दिखाया जाता है कि हमें याद रहे कि हमने एक व्यक्ति ने ऐसे कर्म करने हैं कि नारायण बने और एक लेडी ने ऐसे कर्म करने हैं कि वो लक्ष्मी बन जाए। एक होता है गुड प्लेयर और एक होते हैं ग्रेट प्लेयर। क्या फर्क है दोनों में? जो बहुत अच्छा खेल रहे हैं, जो बहुत मेडल जीत रहे हैं, बहुत नाम मान शान शोहरत कमा रहे हैं, दे आर गुड प्लेयर्स। लेकिन जो हर परिस्थिति में खुश रहते हैं, हार हो या जीत हो उसमें खुश रहते हैं, जिनका व्यवहार बहुत अच्छा है, हर एक के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, उनको कहा जाता है ग्रेट प्लेयर्स। क्या कहा जाता है जी? तो यहां कौन बैठे हैं, जोर से बोलेंगे आप, कौन बैठे हैं? ये एक लक्ष्य लेके जाएंगे। गुड प्लेयर्स तो सीखा ही था हमने बनना है, लेकिन आज से लक्ष्य लेके जाएंगे कि हमने ग्रेट प्लेयर्स हैं और ग्रेट बनना है। कौन कौन लक्ष्य लेके जाएंगे यहां से? बहुत अच्छा जी, थैंक यू। और मेडिटेशन अपने लक्ष्य को, अपनी एनर्जी को फोकस करने में सबसे ज्यादा मददगार साबित होता है। मैं समझता हूं करीब 2 दिन से आप मेडिटेशन की प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे, अभी 3 मिनट के लिए आप फिर से मेडिटेशन की प्रैक्टिस करेंगे सेशन के अंदर ही। और सबसे निवेदन है कि अपने पांव को स्थिर कर लें, म्यूजिक चला दीजिए भाई जी, व्हाइट लाइट ही रहेगी, नए लोग हैं आंखों को बंद कर सकते हैं। अपने पांव को स्थिर कर लें, कोई किसी की बॉडी को नहीं छुए, कमर से नीचे अपनी टांगे स्थिर कर लें, अपने हाथों की उंगलियों को स्थिर, कलाइयों को स्थिर कर लें, कोहनी कंधे भी स्थिर हो चुके, रीढ़ की हड्डी भी स्थिर हो चुकी है, ये गर्दन ये माथा सब कुछ एकदम स्थिर, जिन हाथों से आप काम करते हैं, गेम खेलते हैं, शॉट लगाते हैं, उन हाथों से कहिए मैं आपको बहुत प्यार करता हूं। अपनी कलाइयों से बात करें और कलाइयों से कह दें तुम बहुत अच्छी हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। कोहनी, बाजू और कंधों से कह दें मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। तुम में असीम शक्ति है, जिन पांव से आप गेम खेलते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, अपने पांव से बात करें और कहें ऐ पांव मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। तुम बहुत अच्छे और स्वस्थ हो, अपनी आंखों के पास अपने आप को महसूस करें और आंखों से कहें ऐ आंखें तुम्हारे कारण मैं देख पाता हूं, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। और अब अपने आप को वो सब कुछ करते हुए देखिए जो आप कभी करना चाहते थे, अपने लक्ष्य को देखिए, अपने एम को देखिए, आप उस तक पहुंचते जा रहे हैं। आप जो शॉट खेलना चाहते थे वो खेल पा रहे हैं इन्हीं हाथों से, आप जो करना चाहते थे लाइफ में वो सब कर पा रहे हैं। अपने लक्ष्य के ऊपर पहुंचते हुए देखिए और शुक्रिया कहिए परमात्मा से, शिव पिता से, शुक्रिया, थैंक यू मुझे लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए। ओम शांति शांति। मेडिटेशन करके हम में से किन को बहुत अच्छा लग रहा है, किन को बहुत आनंद आया? लगभग सभी को जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इसलिए आपसे निवेदन कर रहे हैं कि आप यहां से अपने साथ क्या सौगात ले जाएंगे। किताबें तो आप खरीद ही रहे हैं, ऐसा ही है जी, घूम भी आप साथ साथ रहे हैं, लेकिन यहां से क्या सौगात साथ ले जाएंगे, क्या चीज? मेडिटेशन। क्या साथ ले जाएंगे, कहां लेके जाएंगे, कैसे साथ लेके जाएंगे, किस जेब में, किस पॉकेट में? यहां पर रख कर लेके जाएंगे, इस महान गिफ्ट को अपने साथ लेके जाएंगे। और जितना आप करेंगे उतनी एनर्जी चैनलाइज और फोकस्ड हो जाएगी। द नेक्स्ट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सक्सेस के लिए अंडरस्टैंड द राइट एटीट्यूड, सही दृष्टिकोण को समझें। और अब बहुत बेहतरीन चीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा, सभी बहुत ध्यान से सुने देखें, एक समझदार व्यक्ति वह है जो दूसरों को देखकर उनकी विशेषताओं से सीखता है, उनसे तुलना या ईर्ष्या नहीं करता। कल सूरज भाई जी बता रहे थे यदि हमें ईर्ष्या होती है किसी चीज से तो वो चीज हमारे पास कभी भी नहीं आएगी। इसके साथ एक बहुत बेहतरीन चीज, जैसे ही ईर्ष्या करते हैं मानसिक ऊर्जा कम होनी शुरू हो जाती है। ध्यान दीजिए, ईर्ष्या करते ही मानसिक ऊर्जा कम। यदि किसी के पास धन है, कोई अच्छा प्लेयर है, मैं उसे जाना तो आगे चाहता हूं, लेकिन ईर्ष्या करते ही ऊर्जा कैसी हो जाएगी, कम, तो मैं कभी उसके बराबर आ ही नहीं सकता। मेरा और उसका गैप कम हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, किसके कारण हो रहा है? ईर्ष्या के कारण। ध्यान दीजिए, हमें कोई भी काम करने के लिए दो तरह की एनर्जी चाहिए। हाथ को ऐसे करेंगे सभी, कितने तरह की एनर्जी चाहिए? दो, कौन कौन सी? शारीरिक और मानसिक। शारीरिक शक्ति बढ़ाने के लिए क्या करते हैं हम? खाना खा रहे हैं, दूध पी रहे हैं, पनीर खा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, उससे कौन सी शक्ति बढ़ रही है? शारीरिक। लेकिन मानसिक शक्ति बढ़ाने के लिए चाहिए अच्छे विचार, और ईर्ष्या मानसिक शक्ति को सबसे ज्यादा और स्पीड से कम करती है। इसलिए ईर्ष्या यानी कि अपने लक्ष्य से दूर, बहुत बहुत दूर। मैं आपको एक सच्ची घटना बताता हूं, कॉलेज के वक्त की कहानी है। हम वॉलीबॉल खेला करते थे और हमारे जो कैप्टन थे वो सेंटर खेला करते थे वॉलीबॉल के अंदर। लेकिन 2-3 साल खूब खेलने के बाद एक जूनियर आए हमारे कॉलेज के अंदर। वो गांव से आए थे और गांव के अंदर वॉलीबॉल ही खेला करते थे और वो वॉलीबॉल के एक्सपर्ट थे। और धीरे धीरे उनकी वॉलीबॉल को देख, उनके गेम को देखकर हमारे कोच ने उस जूनियर को सेंटर संभाल दिया गेम का, और जो हमारे कैप्टन थे उनको नेट पे खेलना पड़ा उसके कारण। लेकिन अब जो कैप्टन नेट पे खेल रहे थे उनको बहुत ईर्ष्या हो रही थी कि मेरी सीट मुझसे छिन गई, और वो कोशिश करते थे नीचा दिखाने का जो सेंटर में खेल रहे थे। और धीरे धीरे क्या रिजल्ट हुआ, हमारे कैप्टन की गेम और पूर होने शुरू हो गई, और एक बार तो उनको बाहर भी इंतजार करना पड़ा, गेम के बाहर बैठना पड़ा। तो हमारे कोच ने देखा कि परफॉर्मेंस क्यों डाउन हो रही है हमारे कैप्टन की, उनसे डिस्कशन की तो ये मालूम पड़ा कारण था जलसी। और कोच ने उस दिन कैप्टन से ये कहा कि अगर आगे जाना है तो उससे ईर्ष्या नहीं करो, सीखो उसके अंदर क्या क्वालिटी है, वो किस कारण से तुमसे बेहतर है, क्यों तुम्हारी सीट उसने ले ली, उसमें क्या क्वालिटी है। और उस दिन के बाद हमारी टीम के कैप्टन ने बहुत ध्यान लगाया, 1 साल तक पूरा फोकस किया कि वो सेंटर क्यों अच्छा, जो जूनियर वो सेंटर कैसे अच्छा खेल रहा है, और पूरी उनकी क्वालिटीज को एब्जॉर्ब करने की कोशिश की। जो जूनियर थे वो 2-2.5 घंटा प्रैक्टिस करते थे, लेकिन कैप्टन ने 3-3, 4-4 घंटे प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी। और 1 साल बाद वो दिन आया, 1 साल बाद वो दिन फिर आया जब हमारे कैप्टन को फिर से सेंटर संभालने का मौका दिया गया। इसलिए आगे से क्या करें, ईर्ष्या नहीं, ईर्ष्या की बजाय क्या करना है, दूसरों से प्यार करना, उनकी क्वालिटी से सीखना है। और यकीन मानिए जो आपके अंदर क्वालिटी है वो तो आपकी है ही है, लेकिन आपने जो दूसरे से सीख ली है वो क्या हो गई है, प्लस हो गई है। तो आप उस खिलाड़ी से क्या हो जाएंगे, यकीनन बेहतर हो जाएंगे। तो आज से ताली बजाएं, पहले बात तो अपने लिए ताली बजाएं कि हम आगे से दूसरों की क्वालिटी से सीखेंगे। और जब हमारे जब हमारा कॉलेज पूरा हुआ तो जो फाइनल फंक्शन था उसके अंदर जो कैप्टन ने बहुत मेहनत की थी और वो टीम फिर से सेंटर संभाला था, उन्होंने सारे खिलाड़ियों को एक संदेश दिया। एक तो ये संदेश दिया कि कभी मत सोचें कि मैं सीनियर हूं जूनियर हूं, कोई भी खिलाड़ी आपको कुछ भी सिखा सकता है, कोई भी खिलाड़ी, छोटा खिलाड़ी भी सिखा सकता है, इसलिए सबका सम्मान करें। और दूसरा ये बात कि हमेशा अपने से बड़े खिलाड़ियों का साथ जब भी मौका मिले साथ जरूर करें, ताकि बड़े खिलाड़ियों से भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिले। और हमारे कैप्टन ने उस जूनियर का पूरे हॉल के अंदर थैंक्स किया और ये कहा कि ए जूनियर, अगर तू ना मेरे साथ होता, ना हमारे कॉलेज में आता, तो शायद मैं वैसा का वैसा रहता, लेकिन तेरे को देखकर, तेरी विशेषताओं से सीखकर मैंने बहुत इंप्रूवमेंट की और मेरी गेम बहुत बेटर हो गई। तो याद रहेगा ये सबक, यहां से क्या सीख के जा रहे हैं, आगे से क्या करना है जी, ईर्ष्या कहां छोड़ के जा रहे हैं, कहां छोड़ के जा रहे हैं, किस हॉल में यहीं छोड़ जाएं, भगवान के पास छोड़ जाएं और ले जाएं एक कला कि दूसरों में आगे से सिर्फ जोर, आवाज नहीं आई, जोर से बोलिए, सिर्फ क्वालिटीज देखेंगे, अच्छाइयां देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। और कौन कौन खिलाड़ी यहां मौजूद हैं जिनको ये लगता है कि खेल के मैदान में, गेम के अंदर, मैदान के अंदर अक्सर गुस्सा आ जाता है, जिनको ऐसा लगता है जी, लंबा हाथ खड़ा करेंगे, लंबा लंबा, शर्माना नहीं है इसके अंदर, मुझे पता है बहुतों को गुस्सा आता है, आई नो एवरी, मुझे मालूम है, तो लंबा हाथ खड़ा करेंगे, अगर आपने हाथ खड़ा किया तो यकीनन वो उसको कम भी कर पाएंगे। देखिए, और मैं आपको बता देता हूं, गुस्सा इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। ऐसे ही हम कहीं प्रोग्राम करा रहे थे तो एक भाई ने कहा, कहते जी महात्मा गांधी ने तो कहा है दुश्मनों को गले लगाओ, इसलिए मैंने गुस्से को गले लगा रखा। इस दुश्मन को गले नहीं लगाना है, इसको तो भगाना है हमने। हमारे वैज्ञानिकों ने एक रिसर्च की है और वो रिसर्च ये कहती है यदि आप 9 घंटा गेम खेलते हैं 9 आवर्स, तो मान लीजिए आपकी 1000 कैलोरीज बर्न होती हैं 9 घंटा गेम खेलने के बाद। लेकिन अगर आप 15 मिनट गुस्सा करते हैं तो 15 मिनट गुस्से के अंदर भी आपकी 1000 कैलोरीज बर्न होती हैं। विल यू बिलीव इट, 9 घंटा खेलने के बाद 1000 कैलोरीज बर्न और 15 मिनट गुस्सा करने के बाद भी 1000 कैलोरीज बर्न। सोचिए कितनी एनर्जी को हम बर्न कर रहे हैं। गुस्सा करने के बाद मन कैसा हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, फिर से आप फोकस कर ही नहीं पाएंगे, कभी फोकस नहीं कर पाएंगे। इसलिए याद कर लें जेलसी और गुस्सा कहां छोड़ के जा रहे हैं, भगवान के पास छोड़ के जा रहे हैं। यदि आपको अपनी बात कहनी है तो बात कैसे कहेंगे, शांति से। मैं ये नहीं कह रहा अपनी बात नहीं कहें, बात कहें लेकिन कैसे, जोर से बोलिए कैसे, कैसे कहेंगे अपनी बात, शांति से और प्यार से। मुझे छोटी सी बात यहां याद आ रही है, एक बच्चा गुलाब जामुन की दुकान पर बैठा होता है, गुलाब जामुन रसगुल्ले सेल कर रहा होता है, तो वहां पर एक भाई पहुंचता है, कहता है काका ये रसगुल्ले कैसे दिए, तो वो रेट बता देता है जी। इतने वो दुकान जो भाई आता है वो एक रसगुल्ला उठाता है और खा लेता है, और उसके बाद कहता है रसगुल्ले तो बहुत स्वाद है, ऐसे कर पाइया मुझे प्लेट में डाल दे और 1 किलो पैक कर दे। वो बच्चा प्लेट में पाइया रसगुल्ले डाल के रख देता है वहां पर और 1 किलो पैक करना शुरू कर देता है। उधर से वो साहब फटाफट जाते हैं प्लेट के पास और पाइया रसगुल्ले फटाफट खाकर दुकान उस बच्चे के पास फिर आ जाते हैं, कहते काका रसगुल्ले वाकई बड़े स्वाद है, बड़ा जी खुश होया खा के, ये 1 किलो पैक कहते हैं मैनू दे दे, बाकी पैसे जो पैसे होते हैं बच्चे को दे देते हैं। और जाते हुए एक सवाल पूछते हैं, कहते काका एक गलता दस, एक बात तो बता, इतने स्वादिष्ट रसगुल्ले तेरे सामने हैं, तेरा दिल नहीं करता खाने का, तेरा दिल नहीं करता खाने का। तो बच्चा कहता है साहब दिल तो बहुत करता है लेकिन पापा ने गिन के रखे हुए हैं इसीलिए चाट के वापिस रख देता हूं इसीलिए चूस कर वापिस रख देता हूं। तो हम बात कर रहे थे ईर्ष्या की, जलसी की, गुस्से की, और हंसना आपके गुस्से को भगा देता है, मन की स्थिति को अच्छा कर देता है, खुशी पैदा कर देता है। तो गुस्सा, गुस्से और डेंजर में कितना फर्क है, एंगर और डेंजर में कितना फर्क है, सिर्फ डी का, इतना नजदीक पहुंच जाते हैं हम खतरे के। और खिलाड़ियों से मैं पूछना चाहता हूं, हर खिलाड़ी के अंदर एक बीमारियों से लड़ने की क्षमता है, हर व्यक्ति के अंदर, उसे कहते हैं इम्यून सिस्टम। जानते हैं इस चीज को जी, इम्यून सिस्टम क्या करता है, जिसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा वो कैसा होगा, बीमारियों से जल्दी लड़ पाएगा, बीमार कम से कम पड़ेगा, स्वस्थ रहेगा। और गुस्सा करने से सीधा सीधा इफेक्ट पड़ता है इम्यून सिस्टम पर, वो सबसे कमजोर हो जाता है। इसलिए गुस्सा करने वाले ताकतवर नहीं, गुस्सा करने वाले कैसे होते हैं, कमजोर होते हैं। और अभी एक वीडियो देखेंगे।
को 3 चीजों ने बहुत नुकसान पहुंचाया है, 1 ईर्ष्या और द्वेष। ईर्ष्या द्वेष किसे कहते हैं, लोग अपने दुख से इतना तंग नहीं है जितना दूसरे के सुख से तंग है, लोग अपने आप को उठाना नहीं चाहते बल्कि दूसरे को गिराना चाहते हैं। जिनमें ईर्ष्या होती है ऐसे लोग छुप के नुकसान पहुंचाते हैं और फिर सामने आके सहानुभूति जताते हैं। दूसरी चीज भाग्यवादी नजरिया।
तो इसलिए आज से गुस्सा ईर्ष्या कहां छोड़ के जा रहे हैं, यहीं छोड़ के जा रहे हैं। एक सवाल आप सबसे, किनको ये लगता है, कौन व्यक्ति यहां ये वो बैठे हैं जिनको ये लगता है कि मेरा रिलेशन सबके साथ अच्छा है, किसी से भी देखकर, किसी को भी देखकर तकलीफ नहीं होती, वो हाथ खड़ा करेंगे जी, जिनका रिलेशन सबसे बहुत अच्छा, ताली बजाएंगे उनके लिए, ताली बजाएंगे सभी, बहुत अच्छे हैं। ये एक बहुत बड़ी जीवन की उपलब्धि है जो सबको देखकर खुश होते हैं। मान लीजिए मेरे सामने 10 लोग हैं और जो 10वां व्यक्ति है मेरी उससे बिल्कुल नहीं बनती। मैं जैसे ही हाल में प्रवेश करता हूं 10 के 10 लोग लाइन में खड़े हैं, मैं पहले से हाथ मिला रहा हूं, दूसरे से हाथ मिला रहा हूं, मन में क्या चल रहा होगा, मन में क्या चल रहा है जी, वो उससे भी हाथ मिलाना है। बाकी 9 से हाथ मिलाते हुए मजा ही नहीं आ रहा है, दिमाग में क्या चल रहा है वो है, हम लाइफ को एंजॉय नहीं कर रहे हैं, कसूर उसका नहीं है, प्रॉब्लम किसको हो रही है, मुझे प्रॉब्लम हो रही है। मान लीजिए हम 4-5 लोग मिलकर खाना खा रहे हैं, इकट्ठे खाना रखा हुआ खाना खा रहे हैं, और मेरी किसी व्यक्ति से नहीं बनती है, इतने में वो भी आ जाते हैं खाना खाने के लिए, मैं कितना कंफर्टेबली खाना खा पाऊंगा, फ्रीली बोल ही नहीं पाऊंगा, दिमाग में क्या चल रहा होगा, वो चल रहा होगा जी, किसका नुकसान कर रहा हूं मैं। इसलिए मेरे लिए क्या बहुत आवश्यक है, यदि मुझे खुद को सुख देना है तो मेरे लिए क्या बहुत जरूरी है कि मेरा रिलेशन सबके साथ कैसा हो, अच्छा या बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो रिलेशन अच्छा करने का मंत्र जानना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, किनको ये लगता है कि कोच से रिलेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, सभी मानते हैं जी, कैप्टन से रिलेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, सभी मानते हैं, हर खिलाड़ी से रिलेशन अच्छा होना चाहिए, सबसे रिलेशन अच्छा होना चाहिए, उसका मंत्र आपको बता देता हूं, और ये एक निवेदन है, इस मंत्र को जब जब यूज करेंगे, इसने आज तक हर बार काम किया और हमेशा काम करता है, टाइम भरे लग जाए लेकिन हमेशा काम करता है। तैयार है सुनने के लिए, जोर से बोलिए तैयार है जी, कौन कौन तैयार है, सभी तैयार है मंत्र जानने के लिए। ये मंत्र मैंने बहुत बार अजमाया है, आपकी पेशेंस देख रहा हूं मैं, मंत्र तक आ रहा हूं, ये मंत्र मैंने बहुत बार अजमाया और जिनको बताया है सभी बहुत कामयाब रहे हैं। मंत्र है बहुत सिंपल, जिस व्यक्ति से नहीं बनती, जैसे ही वो सामने आ जाए, जैसे ही वो सामने आ जाए, मन ही मन बोल दीजिए कि मेरा इससे रिलेशन बहुत अच्छा है, हमारा संबंध बहुत अच्छा है। और कब तक बोलते रहिए मन ही मन बोलते रहिए, कब तक बोलते रहिए, जब तक वो सामने घूम रहा है, वो इधर घूम रहा है, इधर घूम रहा है, जब तक आपके निगाहों के सामने है, ये मन ही मन बोलते रहिए कि मेरा इससे रिलेशन बहुत अच्छा है, हमारा संबंध आपस में बहुत अच्छा है। आज से पहले क्या होता था, जैसे ही वो व्यक्ति सामने आया जिससे नहीं बनती है, क्या याद आता था हमारे को, इसने ऐसे किया था, ऐसे बोला था, ये किया था, उसको देखते ही वो चीजें याद आती थी और हमारी बिटरनेस और गैप और बढ़ जाता था। और इसलिए लाइन याद रहेगी आपको, क्या बोलेंगे जी, उसको देखते ही बोलते रहना, कब तक बोलते रहना, जब तक वो सामने है। ऐसे मेरे पास कम से कम नहीं तो 20-22 एग्जाम्पल हैं जिन्होंने ये कहा, लेडीज ये कहते हैं जी हमारी बहुरानी से बहुत अच्छी बननी शुरू हो गई है, बहुरानी कहती है हमारी सास से बननी शुरू हो गई है, प्लेयर्स कहते हैं हमारी कोचेज से बननी शुरू हो गई है, सभी के बहुत वंडरफुल एक्सपीरियंस रहे हैं सिर्फ इस लाइन को बोलने से कि मेरा आपसे रिलेशन, मन ही मन बोलना है मेरा आपसे रिलेशन बहुत अच्छा है, हमारा संबंध आपस में बहुत अच्छा है। तो अब हम आ रहे हैं जी नेक्स्ट लाइन के ऊपर, इस बात को जरूर याद रखेंगे, सपोर्टिंग एटीट्यूड, दृष्टिकोण कैसा हो हमारा, कैसा हो, सपोर्टिंग हो। मान लीजिए बच्चे से गिलास टूट गया, बच्चा थोड़ा डर जाता है, गिलास टूट गया, गलती तो हुई है, बच्चा डर गया है, पीछे से क्या आवाज आ सकती है, फादर की या मदर की क्या आवाज आ सकती है, हैं जी, हाँ तोड़ दो ये भी तोड़ दो, ये भी तोड़ दो, वो पहले से डरा हुआ है, उसको डांट पड़ेगी तो एनर्जी लेवल कैसा हो जाएगा उसका, वो पहले डाउन है, टूट गया, उसे मालूम है गलती हो गई है, डांट पड़ गई तो, और लो एक बच्चे के स्कूल में गया, खुश था कि पेपर बहुत अच्छा हुआ, नंबर बहुत अच्छे आएंगे, लेकिन वहां जाकर तो वही हुआ जो होना था, नंबर बहुत कम, स्कूल में एनर्जी लेवल कैसा हो जाएगा बच्चे का, डरता हुआ घर पहुंच रहा है, और अगर घर में आते ही डांट पड़ गई तो एनर्जी लेवल कैसा चला जाएगा, बिल्कुल शून्य। आपको ये बिल्कुल ज्ञात है, मैं समझता हूं आप सभी समझते हैं, किसी भी काम को करने के लिए ऊर्जा कैसी चाहिए, मानसिक ऊर्जा कैसी चाहिए होती है, हाई। जब भी किसी से गलती हो उस वक्त कभी ना डांटें, उस वक्त क्या करें, उस वक्त हौसला दें, उस वक्त उसको तारीफ करें, अप्रिशिएट करें, उसको आगे बढ़ाएं, उसको आगे ले जाएं, उस वक्त कभी नहीं डांटें, उस वक्त उसको हौसले की सबसे ज्यादा जरूरत है। मान लीजिए एक खिलाड़ी मैच चल रहा है और जैसी फुटबॉल को किक मारता, और बहुत इंपॉर्टेंट था वो गोल हो सकता था, जैसे किक मारी लेकिन वो गोल नहीं हुआ, और पीछे दूसरा खिलाड़ी एक कर कहे क्या बात आज तो बड़ा अच्छा खेल रहा है, कैसी स्थिति हो जाएगी, एक तो गोल नहीं हुआ ऊपर से टॉन्ट कस दिया गया, बहुत अच्छा खेल रहा है। मान लीजिए कोई क्रिकेट का मैच चल रहा है और बहुत क्रूशियल टाइम चल रहा है, बहुत लास्ट का टाइम चल रहा है, और वो कैच बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे मैच पलट सकता है, लेकिन वो कैच प्लेयर से छूट जाए और पीछे से कैप्टन आकर बोले साथ में एक खिलाड़ी और खड़ा कर दें, ठीक हो जाएगा फिर? सोचिए मन की स्थिति कैसी हो जाएगी, कैसी हो जाएगी? डाउन। वो बिल्कुल आगे खेल ही नहीं पाएगा, उससे बिल्कुल टूट जाएगा वो। उस वक्त क्या कहना बहुत जरूरी है, करते रहो कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है। नहीं, क्या बोलेंगे आप? तुम ही हो जितने मैच जिताना है, तुम ही बहुत बढ़िया प्लेयर हो, तुम कर सकते हो, तुम्हें असीम शक्ति है, ऐसे उसको हौसला देना है। घर के अंदर जब भी किसी को नुकसान हो, गलती हो, अगर वो बच्चा उस गलती को जानता है कि उससे गलती हुई है, उस वक्त उसको डांटिए नहीं। अगर आपने डांट दिया, वो कभी आपको सच नहीं बताएगा, कभी आपके सामने नहीं आएगा। जब कोई बच्चा आपसे सच बोल रहा है, उसकी गलती हुई है, उस वक्त उसको क्या करेंगे आगे से, यहां से क्या करेंगे आगे से? जोर से बोलिए, धीरे आवाज आ रही है जी, बहुत ताकत भरेंगे कि तुम कर सकते हो, तुम में असीम ताकत है, तुम में असीम शक्ति है, ऐसे हौसला देंगे, उसको सपोर्ट करेंगे और देखिए वो कितनी ताकत से और आगे आ जाएगा। आपने देखा होगा अक्सर गेम्स के अंदर ऐसा किया जाता है कि जो खिलाड़ी वीक होता है, लास्ट में उसको जरूर चांस दिया जाता है, उसको एनकरेज किया जाता है और वही मैच को जिता देता है। इसलिए याद रहेगा जी, क्या करना है, हमेशा तीन चीजें याद कर लीजिए, मोटिवेट करना है, एनकरेज करना है, मोटिवेट करना है, एनकरेज करना है और सपोर्ट करना है। जोर से बोलिए, क्या क्या करेंगे? मोटिवेट करना है, एनकरेज करना है, सपोर्ट करना है। यदि कोई व्यक्ति घर में या खेल के अंदर थोड़ा सा भी अच्छा करता है, आप उसको अप्रिशिएट कर दीजिए, एनर्जी लेवल कहां चला जाएगा? किसी बच्चे ने घर के अंदर चाय बनाई आपके लिए और आपने कह दिया चाय बहुत अच्छी है, भले उसमें नमक डाला हो, आप बोल दीजिए चाय बहुत अच्छी है, बच्चे का मन कैसा हो जाएगा जी? वो दोबारा कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दोबारा चाय अपना बना कर लाएगा। और आपने ये कह दिया क्या चाय बनाई है, पहले बनाना तो सीख लो, आप दोबारा कहते रहेंगे वो कभी चाय नहीं बनाएगा, एनर्जी लेवल लो हो गया। इसलिए ये बात पक्की कर लेंगे, हम जितने घर में बच्चे हैं और प्लेयर्स हैं, सभी एक दूसरे को हमेशा एनकरेज, अप्रिशिएट, मोटिवेट और सपोर्ट करेंगे। तैयार है जी इस चीज के लिए? ताली बजाएंगे अपने लिए कि हम आज से बहुत कुछ सीख के जा रहे हैं यहां से। बहुत बढ़िया, और कितनी अच्छी लाइन यहां लिखी हुई है देखिए, एक तलवार की कीमत होती है उसके धार से और एक इंसान की कीमत होती है उसके व्यवहार से। हम तो पत्थर थे, अपना हुनर मालूम ना था, मुसीबतों ने तराशा और हीरा बना दिया। मैं अखबार पढ़ रहा था कुछ दिन पहले और अखबार के अंदर एक कहानी लिखी हुई थी, कैथल, जानते होंगे आप, जो हरियाणा के लोग हैं तो जानते होंगे, कैथल की कहानी है। एक बच्ची जो बहुत मोटी थी, गिप्पी उसको कहके बुलाया करते थे, उसको बहुत लोग तंग करते, उसके सारे क्लासमेट सारे दोस्त तंग करते थे। उसके पिता ने उसको कहा बच्चे फिक्र नहीं करो, तुम में ताकत है, मोटे हो तो क्या हुआ, तुम बॉक्सिंग करना शुरू कर दो। उसे लगा मैं कर नहीं सकती, लेकिन उसके पिता ने उसको मोटिवेट किया, बहुत उसको कोचिंग करवाई और अल्टीमेटली वो बॉक्सर बन गई। आज वो अपने गांव जहां रहती है, अपने गांव के लिए उसने एक मेडल और दो सिल्वर जीते और पूरे गांव को उसके ऊपर गर्व है। ये देखिए, नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना, दिस इज द रियल पावर। मुसीबतें ही आगे लेके जाती हैं। आप जानते हैं मेवेदर के बारे में, मेवेदर जिसके पीछे न्यूज बहुत आई थी, 1100 करोड़ का मुकाबला था यूएस के अंदर। अगर आप मेवेदर की कहानी सुने, ये बहुत गरीब परिवार से है। जब ये 14 साल का था, इसके पिता ने इसके प्यारे कुत्ते को मार दिया और ये उस गुस्से में घर से बाहर आ गया। और मेवेदर ने कहा कि तब जब मैं छोटा था, तब मैं नारियल के पेड़ पे चढ़कर अपने मुक्कों से नारियल तोड़ा करता था, पेड़ों से तोड़ा करता था, और वो मेरी शुरुआत थी मुक्केबाजी की। वहां से मेरे हाथों के अंदर मजबूती आई और जब मैं घर छोड़कर गया, मनीला शहर में चला गया यूएस के अंदर, वहां मेरे पास कुछ खाने के लिए नहीं था, मैं जमीन पर सोया, गत्तों पर सोया, लकड़ी पर सोया, मैंने हॉट डॉग बेचकर अपना गुजारा किया और उस संघर्ष ने मेरे को ताकत दी। और जब मैं हारता हूं, मैं जब दोबारा आता हूं, हर हार मुझे एक नई ऊर्जा देती है और मैं नई जीत के लिए तैयार हो जाता हूं। ताली बजाएंगे उस महान खिलाड़ी के लिए। मेवेदर ने कहा कि मैं हार से परेशान नहीं होता, हर हार से मुझे एक नई ऊर्जा मिलती है, ताकत मिलती है। ये सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है हमारे लिए, जो मुसीबतों से आगे बढ़ रहे हैं, मुसीबतों का सामना करने से आगे बढ़ रहे हैं। और एक बहुत सुंदर लाइन जो सकारात्मक व्यक्तित्व को दर्शाती है, पढ़ेंगे मेरे साथ? Either I win or I learn. इसमें क्या नहीं लिखा हुआ? क्या नहीं लिखा हुआ? Lose. या तो मैं जीतता हूं या मैं सीखता हूं. अगर हार गया तो सीखूंगा, अगर या मैं जीतता हूं. और ऐसे ही कहा जाता है, मुसीबतें तो सब पर आती हैं. मुसीबतें तो कोई बिखर जाता है, कोई निखर जाता है. कोई बिखर जाता है, कोई निखर जाता है. तो हम कौन हैं? कौन हैं हम? मुसीबतों को मना नहीं करना, वो तो आएंगी. और हर मुसीबत कुछ निखारने के लिए आती है. नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं. क्रिएट पॉजिटिव मेंटल पिक्चर. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. हर चीज को पिक्चराइज करें. हर चीज को, जैसे मैं कुछ साइंटिफिक तथ्य आपको बताने जा रहा हूं, यहां पर ध्यान से देखेंगे आप. मॉरन ने एक स्टडी की 1996 के अंदर, उसके अंदर ये कहा कि 90% ऑफ कोचेज का जब इंटरव्यू लिया गया तो उन्होंने इस बात को बिलीव किया कि मेंटल स्किल एक सफलता के लिए बहुत जरूरी है. मानसिक स्किल, फिजिकल स्किल तो चाहिए, पर मेंटल स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. उसके बाद माइकल जॉर्डन, जो बहुत अच्छे बास्केटबॉल प्लेयर हैं, उन्होंने अपने इंटरव्यू के अंदर बताया कि मैं जब भी कोई गेम खेलता हूं उससे पहले पूरा इमेजिन करता हूं स्टेडियम को, और अपने आप को देखता हूं खेलते हुए, और देखता हूं अपने आप को जीतते हुए, खेलते हुए और जीते हुए. जितने भी खिलाड़ी आज आगे पहुंचे हैं, जो बहुत राइज कर रहे हैं, हर खिलाड़ी इमेजिन करता है. मान लीजिए आप एक, मैं पूछना चाहता हूं खिलाड़ियों से, जब आप एक नए ग्राउंड में गए, वहां बिल्कुल नए लोगों से आपका मुकाबला है, मन की स्थिति कैसी होती है? नर्वस होती है. और एक बहुत बढ़िया, अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपके बहुत चीज काम आएगी. एक रिसर्च में कहा गया, एक प्लेयर को कहा गया कि आप बर्फ पर दौड़िए. वार्ड से पहले बर्फ पर नहीं दौड़ा था. देखिए बर्फ पे चलना ही बड़ा मुश्किल होता है, उसको दौड़ने के लिए कहा गया. और वो, अगर वो खिलाड़ी मन में ये सोच रहा है कि यार मेरे को दौड़ने के लिए कह दिया, मैं तो आज तक दौड़ा ही नहीं, पहली बार दौड़ रहा हूं, तो कहीं गिर ना जाऊं, तो गिरने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे. और उस खिलाड़ी ने यह कहा अपने आप से कि मैं तो बरसों से बर्फ पे दौड़ता रहा हूं, मैं तो एक्सपर्ट हूं दौड़ने का, मैं तो परफेक्ट दौड़ता हूं बर्फ के ऊपर, मेरे से अच्छा तो कोई दौड़ ही नहीं सकता, आई एम परफेक्ट, मेरे पांव का बैलेंस बहुत अच्छा रहता है. और वो खिलाड़ी दौड़ पाया सिर्फ अपने आप की प्रोग्रामिंग करने से, अपने आप से अच्छा बोलने से. तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, जब भी नए मैदान में जाएं, अपने आप को प्रोग्रामिंग कर दें. कुछ लाइन बता रहा हूं मैं, कर सकते हैं प्रोग्रामिंग? हमारे एक भाई यहां मनोज भाई बैठे हैं, वो भी बताएंगे कि कैसी किसी प्रोग्रामिंग. मैं उनकी लाइन बताऊंगा आपको कि वो क्या प्रोग्रामिंग करते हैं. जब भी मैदान में जाए तो वहां की जितनी ऑडियंस है उन सबको, हालांकि है वो अपोजिशन टीम की, लेकिन ऑडियंस को देखकर ये बोल दें ये सारी मेरी सपोर्ट के लिए आई है. मनी मन क्या बोल दें? सारी ऑडियंस मेरी सपोर्ट के लिए है. जो सामने वाली टीम के खिलाड़ी हैं ये भी चाहते हैं कि मैं जीतूं. ये सब कुछ, ये मैदान, ये घास, ये हवा, सब कुछ मुझे जिताने के लिए है. जितना आप सोचेंगे उतना आपको मजा आना शुरू हो जाएगा. और आपको ये सोचना है कि ये जो मैदान है, मैं ये नया नहीं है, मैं तो कब से आ रहा हूं यहां पर खेलने के लिए, ये तो मेरा होम ग्राउंड है, मैं सबको जानता हूं यहां पर. जैसे आप प्रोग्रामिंग करेंगे वैसी आपको फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी. याद रहेंगी चंद लाइनें जी. थैंक यू. ये हमने जरूर करना है. अभी कंटिन्यू है, कुछ और भी है. नॉइज ब्रेन्स रिस्पॉन्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट चित्र है. इसमें दो फोटो दिखाई हुई हैं ब्रेन की. एक चित्र में ये, मान लीजिए आप अपने हाथ को, मैं कह दूं, जैसे मैं अपना हाथ करूंगा, आपको वैसे ही अपना हाथ करना है. खोल दीजिए मुट्ठी, बंद कर दीजिए, वापस ले आइए. अब सिर्फ आप इमेजिन करें कि आपका हाथ ऊपर आ रहा है. सिर्फ इमेजिन करें, जैसा आपने किया सिर्फ कल्पना करें कि हाथ ऊपर आया, मुट्ठी बंद है, मुट्ठी खोल ली, मुट्ठी बंद कर ली, फिर से हाथ उसी पोजीशन में आ गया जहां पहले था. कर लिया इमेजिन आपने जी? बिल्कुल सिंपल है, लेकिन दोनों चीजें अलग अलग हैं. एक बार हमने किया और एक बार हमने नहीं किया, लेकिन ब्रेन के लिए दोनों लगभग सेम है, ऑलमोस्ट सेम. ब्रेन डिफरेंशिएट नहीं कर सकता कि हमने एक्चुअल में किया या हमने इसको इमेजिन किया। यदि आप गेम को सिर्फ इमेजिन कर रहे हैं कि मैं खेल रहा हूं, मैं से शॉट लगा रहा हूं, या मैं से शॉट लगा रहा हूं, या मैं बास्केट डाल रहा हूं बॉल को, हर गेम का सिर्फ इमेजिन करने से ही आपकी बॉडी वैसा एडॉप्ट करना शुरू कर देती है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं चाहूंगा जितने खिलाड़ी यहां बैठे हैं ये चीज सीख के जाएं कि हर गेम से पहले इमेजिन करें उस ग्राउंड को, उस खेल को, अपने आप को खेलते हुए देखें। और यकीन माने जिन जिन लोगों ने किया उन्होंने सफलता को हासिल किया, जीत को चूमा। और लास्ट, कट ऑल बैरियर्स। मेरे साथ बोलिए, कौन से बैरियर तोड़ने? कोई बैरियर नहीं है आसपास, है कोई बैरियर? दिख रहा है आपको? कहां दिख रहा है जी? कहां है बैरियर? बाहर है जी, बाहर। हम किस बैरियर की बात कर रहे हैं यहां पर? कौन से बैरियर तोड़ने हैं? जो बैरियर कहां बना रखे हैं? यहां बना रखे हैं। और सबसे बड़ा बैरियर ये बना लेते हैं कि ये बड़ा मुश्किल है। यकीन मानिए, मैं आपको अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बता रहा हूं। हम एक स्कूल में जा रहे हैं करीब 21 दिन से, और वहां के बच्चों को हमने ये कहा कि जब आप क्लास में बैठते हैं, मैथ्स की है या साइंस की है या इंग्लिश की क्लास है, जो आपको मुश्किल लगता है उस सब्जेक्ट में टीचर पढ़ा रहे हो, तो मन ही मन बोल दीजिए, करीब 4-5 बार बोल दीजिए कि ये सब्जेक्ट तो बहुत इजी है, ये सब्जेक्ट बहुत आसान है और मैं इसे चुटकियों में कर सकता हूं। आप यकीन मानेंगे, सिर्फ 2-3 दिन के बाद ये बच्चों ने कहना शुरू कर दिया, जिसको मैथ मुश्किल लगता था, सर मैथ्स इजी लगना शुरू हो गया है। जिसको एसएस मुश्किल लगती थी, सर एसएस आसान लगनी शुरू हो गई है। क्योंकि बच्चे शुरुआत कैसे करते थे, उस सब्जेक्ट की क्लास शुरू होते ही क्या अपने आपको कमांड देते थे कि ये मुश्किल है, और मुश्किल लगना शुरू हो गया, ये बैरियर बांध लिया। और अब बैरियर ब्रेक कर दिया है, कौन कौन सी गेम आप खेल सकते हैं और कौन सा प्राइज आप जीत सकते हैं, कौन सी चैंपियनशिप जीत सकते हैं, कौन कौन सी चैंपियनशिप जीत सकते हैं, हर जीत सकते हैं, आवाज नहीं आ रही जी, कौन कौन सी चैंपियनशिप जीत सकते हैं, हर चैंपियनशिप। आप कैसे खिलाड़ी हैं, गुड हैं या ग्रेट हैं? ग्रेट प्लेयर, गुड तो है ही है, ग्रेट प्लेयर भी साथ में। अपने आप को मोटिवेट कीजिए, चार्ज कीजिए अपने आप को, और अपने बैरियर्स को आज ब्रेक कर देंगे। मैं समझता हूं एक चित्र है, 2 मिनट पूरा कर रहे हैं इसको। दिख रहा है आपको बहुत बड़ा घोड़ा दिख रहा है यहां पर? अच्छा, हाथी है, पहले घोड़े की फोटो लगाई थी हमने, बड़के हाथी हो गए। ये एक हाथी है, इतने बड़े हाथी को सिर्फ एक चेन, पतली सी रस्सी से बांधा हुआ है। इसको देखकर मन में क्या आता होगा, जो इतने सैकड़ों किलो वजन उठा लेता है वो हाथी पतली सी चेन से बांधा हुआ है, क्यों नहीं तोड़ के चला जाता? हाँ, देखिए जिन्होंने सुना हुआ उनको तो मालूम है, लेकिन ये बाकियों के लिए क्या सवाल है। देखिए, बहुत अच्छा बच्चे ने बताया, ये क्यों नहीं तोड़ देता, क्योंकि जब बचपन में इसको ऐसी पतली सी चेन से बांधा गया था, इसने तोड़ने की कोशिश की लेकिन तोड़ नहीं पाया, तो दिमाग में क्या बात बैठ गई कि मैं चेन को तोड़ नहीं सकता। और ये बात कब तक बैठी हुई है? जब तक बड़ा हो गया है। और इसलिए जैसे इसके पांव में चेन बांध देते हैं, इसे बस क्या दिमाग में बात आ गई है कि मैं अब हिल नहीं सकता। और इतने बड़े जानवर को, जो धरती के ऊपर सबसे बड़ा जानवर है, सिर्फ इतनी सी बात ने जिंदगी भर के लिए गुलाम बना दिया। कितनी सी बात ने, कि मैं ये चेन तोड़ नहीं सकता। यदि हम में से कोई इसके पास जाए और इसको समझा दे कि भैया एक चेन तो क्या, 4-4 चेन भी तोड़ सकते हो, तो इसको कंट्रोल करना लगभग नामुमकिन है। इसलिए हम अपने आप को यही कह के बांध लेते हैं कि ये तो मैं नहीं कर सकता, वो प्लेयर तो बहुत ताकतवर है। जिस दिन आपने ये कह दिया वो ताकतवर है, ये मुश्किल है, आपकी शक्ति खत्म। तो क्या बोलेंगे जी, सर्वोत्तम प्लेयर कौन है? आई एम द बेस्ट, ऐसा बोलेंगे। और हर काम मैं कर सकता हूं। और यहां से एक शब्द और छोड़ जाएंगे, गुस्सा आप छोड़ गए, ईर्ष्या आप छोड़ गए, एक और शब्द छोड़ जाइए, मुश्किल और टफ। और क्या ले जाएंगे साथ यहां से? इजी है। चीजें कैसी हैं? इजी हैं, आसान है। थैंक यू। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। और अभी हम 7-8 मिनट के लिए मेडिटेशन करेंगे। जैसा मैं आपसे कहूंगा आप बिल्कुल वैसा करते रहेंगे। इन हाथों से हम क्या क्या करते हैं? इन हाथों से क्या क्या कर रहे हैं? इन हाथों से सारा कुछ इनसे कर रहे हैं जी। इन्हीं से ही गेम खेल रहे हैं, इन्हीं से ही खाना खा रहे हैं, इन्हीं से ही संवार रहे हैं अपने आप को। इनका थैंक्स बनता है? कितना थैंक्स बनता है हाथों का? पांव का थैंक्स बनता है? कहां कहां लेके जाते हैं पांव हमारे को? हर जगह यही लेके जा रहे हैं। अगर ये 2 घंटे की छुट्टी पे चले जाएं क्या होगा? कहीं जा ही नहीं पाएंगे। यहां दिल है, कब से धड़क रहा है दिल? बचपन से दिल धड़क रहा है। आधे घंटे की छुट्टी मांगी कभी इसने? अगर ये आधे घंटे की छुट्टी पे चला जाए तो समझ लीजिए आधी छुट्टी सारी हो जाएगी। कितना शुक्रिया बनता है हार्ट का, इन आंखों का। गुलाब जामुन खाया आपने? गुलाब जामुन कभी आइसक्रीम भी खाई होगी आपने? क्या बोलते हैं गुलाब जामुन खाने के बाद, क्या बोलते हैं जी? आ हा हा, ऐसे अकेला मजा नहीं, क्या बोलते हैं? आ हा, बड़ा मजा आ गया। ये सारा मजा कौन दे रहा है? जीभ दे रही है। सोचिए जीभ नहीं है तो खाते रहो गुलाब जामुन, कोई मजा ही नहीं आने वाला। इस जीभ का कितना थैंक्स बनता है? बहुत ज्यादा। तो आज हम शुक्रिया करेंगे अपने सभी बॉडी पार्ट्स का। और हम भोजन कब से कर रहे हैं, कब से रोटी खा रहे हैं? बचपन से खा रहे हैं। आज तक कितनी रोटी कितनी सब्जी खाई होगी, अंदाजा ही नहीं है। और इतना खाने के लिए हम क्या बोलते हैं? भाई बस अब तो हिम्मत नहीं, और नहीं खा सकते, ऐसा बोलते हैं ना जी। और फ्रिज में रखे रखे कई बार तो खाना भी खराब हो जाता है, देना पड़ता और किसी को। मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या इतना खाने के लिए सबके पास है? क्या है इतना खाना सबके पास? नहीं है ना जी। तो क्या शुक्रिया बनता है परमात्मा का, इतना खाना तूने मुझे दिया खाने के लिए। हम कपड़ा कब से पहन रहे हैं जी? आज तक कितना कपड़ा पहना? बहुत कपड़ा पहना। मैं समझता हूँ कि बहुतों की अलमारी में तो जगह भी नहीं हुई कपड़े रखने के लिए, इतना कपड़ा होगा। और बहुत कपड़ों को तो नंबर भी नहीं आता होगा, बस एक एक दो बार पहने होंगे। क्या इतना कपड़ा सबके पास है पहनने के लिए? तो क्या बनता है जी? शुक्रिया बनता है परमात्मा का कि तेरा हजारों लाखों शुक्रिया जो तूने हमें इतना कुछ दिया। तो अभी मैं आपको जैसे जैसा कहूंगा, अपनी आंखों पर हाथ रखें, कानों पर हाथ रखें, हम पूरी बॉडी का शुक्रिया करेंगे, फिर अपने दोनों हाथों को आसमान में ले जाकर भगवान का शुक्रिया करेंगे। तैयार हैं इसके लिए जी? थैंक यू। अभी मेडिटेशन करेंगे। अपने पांव को स्थिर कर लें, अपने हाथों को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, कुछ भी नहीं रखें इन हाथों में। कमर को ढीला छोड़ दें, सपोर्ट नहीं लें किसी भी चीज की, सपोर्ट छोड़ दें। देखें आपके पांव बिल्कुल स्थिर, कमर से नीचे ये दोनों टांगें बिल्कुल स्थिर, ये कंधे बिल्कुल स्थिर हो चुके हैं। अपने दोनों हाथों को अपनी आंखों पर रखें और आंखों से कहें, तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारे कारण ही मैं देख पाता हूं। मन ही मन बोलिए, तुम्हारा थैंक यू। कानों पर रखें, ऐ मेरे कान, तुम्हारे कारण मैं हर चीज सुन पाता हूं, अच्छी बातें सुन पाता हूं, तुम्हारा शुक्रिया, थैंक यू। अपने जुबान पर, मुंह पर हाथ को रखें और कहें, ऐ मेरी जुबान, तुम्हारे कारण ही मैं हर चीज का टेस्ट कर पाता हूं, तुम्हारे कारण ही मैं बोल पाता हूं, तुम्हारा शुक्रिया, शुक्रिया, थैंक यू। दिल पर हाथ रखें और धड़कते हुए दिल को महसूस करें और अपने दिल से कह दें, ऐ मेरे दिल, तेरा शुक्रिया। धड़कते दिल को महसूस करें, ऐ मेरे दिल, तेरा शुक्रिया। तू ही जीवन चला रहा है। मैं सदा तेरा शुक्रगुजार हूं मेरे दिल। इन हाथों को टांगों पर रखें, टांगों से बात करें और कहें, ए मेरी टांगे, मैं जहां चाहता हूं मुझे ले जाती हो। अगर थकी हो फिर भी मुझे जहां चाहता हूं ले जाती हो। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। एक हाथ से दूसरे हाथ को पकड़ लें और हाथ से कहें, ए मेरे सुंदर हाथ, तुम ही तो हो जो मुझे खाना खिलाते हो, संवारते हो, मेरे सारे काम करते हो। तुम्हारा शुक्रिया, थैंक यू। और आप अपने दोनों हाथों को आसमान की तरफ कर लें, खुदा की तरफ, और देखें परमात्मा की रोशनी आ रही है सीधी आपके चेहरे पर, और भगवान से कह दें, ओ मेरे पिता, इतने वर्षों से, जन्म से लेकर आज तक मुझे भोजन रोटी देने के लिए आपका शुक्रिया, शुक्रिया, थैंक यू। ए मेरे मालिक, ए परम पिता, बचपन से लेकर आज तक तन पर कपड़ा देने के लिए आपका शुक्रिया, शुक्रिया। सर पर छत देने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। दोनों हाथों को ऐसे ही अपनी टांगों पर रख लें। हाथ आपका पाम ऊपर की तरफ, और परमात्मा से आती शक्तियों को ग्रहण करते रहें। परमात्मा की बहुत सुंदर रोशनी और ऊर्जा सीधा आपकी तरफ आ रही है, आपकी आंखों पर, आपके चेहरे पर, इन हाथों पर परमात्मा की रोशनी आ रही है। परमात्मा से कह दे, ओ बाबा, मेरे अंदर असीम शक्ति है, आती किरणों को देखते रहें, मेरे अंदर असीम ताकत है, मेरे अंदर असीम आत्मविश्वास है बाबा, भगवान से कह दे। आती हुई शक्तियों को ग्रहण करते रहे जो सीधा आपके हाथों पर, आपकी बाहों पर और कंधों पर आ रही है, कह दे शुक्रिया, शुक्रिया, थैंक यू। ओम शांति, शांति, शांति। हम में से कौन कौन मेडिटेशन को बहुत एंजॉय कर पाया? बहुत मजा आया जी, थैंक यू। जैसे हम कहीं बाहर घूमने के लिए जाते हैं तो खाली हाथ तो घर वापस नहीं जाते, क्या करते हैं? कुछ चीज साथ खरीद कर ले जाते हैं। तो यहां पर आप कुछ छोड़ कर जा रहे हैं और साथ में क्या लेकर जा रहे हैं? मेडिटेशन जरूर करते रहिए, करते रहिए और खुश रहिए, एंजॉय करते रहिए, मौज करते रहिए। थैंक यू। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद ब्रदर गौरव भाई के, आपने बहुत ही सुंदर क्लास कराया।